और वन में जाकर के वानप्रस्थ आश्रम को सेवन करे, यानी स्त्री भी हो तो वो भी उसके साथ में रह सके किंतु स्त्री से सहवास नहीं करे, और वन में रह करके दोनों अपना तपस्या करे और अपनी आत्मा के कल्याण के लिए साधन करे। किंतु जो वानप्रस्थ आश्रम का जो धर्म बदला है वो भी बहुत ही कठिन है, जिस तरह संन्यास आश्रम का कठिन है इसी प्रकार से वानप्रस्थ आश्रम का भी धर्म बहुत ही कठिन है। इसलिए आजकल कली काल के बीच के मां वानप्रस्थ आश्रम को तो ग्रहण नहीं करे, किंतु समझो कि प्रवृत्ति मार्ग से अटकर करके परमात्मा की भक्ति के मार्ग लग जावे तो उसको कल्याण हो सके, और भगवान की भक्ति के बीच के मां और ज्ञान के मां सबको मात्र मनुष्य मात्र को अधिकार है। चाहे कोई आपने समझो ब्रह्मचारी हो, चाहे गृहस्थी हो, चाहे वानप्रस्थी हो, चाहे सन्यासी हो, इसी प्रकार से गृहस्थ के मां भी चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, और चाहे चंदार भी क्यों नहीं हो, भगवान ने यह बात साफ गीता के मां कही है। गीता की 9वें अध्याय के 32 के श्लोक के बीच के मां की मांग ही पात्र पाश्रित हो ये पिशु पाप यो नहीं हो त्रियो वैश्वा तथा शूद्रास तेपी अंति परांग हे पाद मेरी शरण लेकर के चाहे वैश हो, चाहे अस्त्री हो, चाहे शूद्र हो, और चाहे पापियों ने यानि दंडाल आदि माने अछूत जाति जो है चमार भंगी मंत्र आदि वे भी क्यों नहीं हो, मेरी शरण लेकर के वे भी ऐसा परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। इससे ये बात सिद्ध हो जाती है कि भगवान की शरण में भगवान की भक्ति में सब यावन मात्र मनुष्य मात्र को अधिकार है। जी कहो कि ब्राह्मण और क्षत्रिय उत्तम जो जाति है उसकी भगवान ने क्या मर्यादा रखी, तो भी रखी है, कहा कि किन पुण्य ब्राह्मण पुण्य भक्ता राज रहते तथा फिर पुण्यात्मा जो ब्राह्मण है और राज ऋषि जो क्षत्रिय है वे मेरी शरण आने पर उनका उद्धार हो जावे, इस प्रकार की मेरी भक्ति करने से उन भक्तों का उद्धार हो जावे, इसमें तो करना ही क्या है। तो इससे यह बात सिद्ध हो जाती है कि उनकी समझो कि आपने भगवान मर्यादा रखी है, उनका गौरव रखा है, ये नहीं कि एक प्रकार से थी भगवान एक उनकी कोई आपने अवहेलना करी हो, उनकी प्रशंसा की है भगवान ने। तो इससे ये बात सिद्ध हो जाती है कि मनुष्य मात्र का ही अधिकार है। इसलिए गृहस्थाश्रम के बीच के मां रह करके प्रवृत्ति मार्ग के मां रह करके कल्याण का मार्ग बतलाया जाता है। जैसे कोई आदमी आपकी दुकान का काम करता है तो उसको किस प्रकार से अपना काम करना चाहिए, काम जिस प्रकार से थी वो कर रहा है उसमें कोई फेरबदल की कोई जरूरत नहीं, जो कुछ वो कर रहा है किसी बात का व्यापार कर रहा है या गल्ले का व्यापार करता है या कपड़े का करता है या सूत का करता है या चांदी सोने का करता है या समझो कि घी तेल आदि चीनी आदि जो एक प्रकार रस जो है इसका व्यापार करता है, कोई भी व्यापार करता है, क्योंकि वैश्य के लिए क्रिय विक्रिय जो है ये उसके लिए शास्त्र का विधान है, और ब्राह्मण लोग तो रस नहीं बेच सकते, ब्राह्मण तो एक प्रकार से समझो कि रस बिक्री करे तो दोष का भागी होता है, किंतु वैश्य जो है उसके लिए कोई ऐसी बात नहीं, क्योंकि महाभारत के मां लिखा है कि तुलाधर जो वैश्य है वो सब प्रकार का रस बेचा करता था मदरा को छोड़ करके, इस कारण से थी उसकी उत्तम गति हुई, मांस और मदरा वो नहीं बेचता था, ये भी एक प्रकार का रस है, किंतु एक प्रकार से थी और जो रस है वो बेचा करता था। तो उसके प्रभाव से समझो कि आपने उसकी आत्मा की शुद्धि होकर के और वो परम गति को प्राप्त हो गया। किंतु बात यह है उस व्यापार के बीच के मां इन बातों के विषय में थोड़ा ध्यान देना चाहिए। हमारे व्यापार के मां जो विषमता है मत माने, हमारा जो है कि एक के साथ में अच्छा व्यवहार एक के साथ में बुरा व्यवहार ऐसा नहीं होकर के समता का व्यवहार होना चाहिए, सबके साथ के बीच में समान व्यवहार होना चाहिए। और व्यापार के मां हमारे जो झूठ कपड़ चोरी बेईमानी दगाबाजी है उसका अवश्य त्याग करना चाहिए। वो झूठ कपट बेईमानी दगाबाजी के व्यापार से कभी किसी की मुक्ति नहीं होती, वो तो छोड़ना ही चाहिए। और व्यापार के बीच के मां समझो कि आपने ऐसी कौन सी बात है कि जिससे आत्मा को कल्याण हो जाए, तो वो है निष्काम भाव। निष्काम भाव कितनी त्यागत है कि वो झूठ कपट बेईमान इत्यादि जो बुरे जो पाप है उनका एकदम वो हटा ही देता है, उसमें निष्काम पणे में इतनो आपने प्रभाव है। तो निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए। निष्काम का कई भेद है कि जैसे भगवत अर्थ कर्म है, भगवत अर्पण कर्म है, वे उच्च कोटि का निष्काम है। और एक प्रकार से कर्मों के बीच के मां जो ऐसे आपने समझो कि अभिमान का त्याग कर देना है, कर्मों के बीच के मां आसक्ति का त्याग कर देना है, कर्मों के बीच के मां फर्क का त्याग कर देना है, एक प्रकार से स्वार्थ का त्याग कर देना है। ये सब निष्काम के ही अंग हैं। ये निष्काम जो कर्म है वो मुक्ति के देने वाला है। तो किस प्रकार से ती करना चाहिए, उससे उच्च निष्काम क्या है कि हम एक प्रकार से ती अपने मन के वहां ये निश्चय कर ले कि हमारी जो दुकान है ये सब भगवान की है और मैं भी भगवान का हूँ और ये सब चीजें भी भगवान की है, सब एक प्रकार से हम लोग भगवान के हैं। किस प्रकार से थी सब चीज भगवान की समझ ले और वास्तव में भगवान की है ही, इस बात से एक प्रकार से हम सब भगवान की चीज समझ ले और समझ करके हम उसका गुमास्ता बन कर करके और उसका काम हम करें। हम भगवान का गुमास्ता है और हमारी तनख्वाह क्या है कि रोटी खाना और कपड़ा पहनना। और घर के मां जितने जो आदमी हैं वे एक प्रकार से भगवान के कुटुंब वाले हैं, उनकी सेवा करना ये भगवान की सेवा है। और सेवा करने के मुख्य में ऐसा समझें कि आप भगवान की दुकान जो है वो सबकी सेवा के लिए है। भगवान के तो सारी दुनिया ही उसकी प्रजा है, सारी दुनिया उसकी संतान है, इसलिए सबको भगवान की संतान समझ करके हर हम सब की सेवा करें तो एक प्रकार से भगवान इससे बड़े खुश होते हैं। दूसरी बात यह है कि और हम इससे भी उच्च कोटि का साधन करें तो और जल्दी हमारा कल्याण हो सकता है। उच्च कोटि का साधन क्या है कि परमात्मा सब में व्यापक है, सब में परमात्मा व्यापक है, यह बात समझ कर करके और हम सब की सेवा करें कि परमात्मा सब में व्यापक है तो सब की सेवा परमात्मा की सेवा है। जिस तरह आकाश के भीतर के बीच के मां सब जो बादल रहते हैं उस बादलों में जो आकाश व्यापक है, यो परमात्मा सारे ब्रह्मांड के बीच के मां व्यापक हैं। इस प्रकार से समझ करके हम परमात्मा की सेवा करें। कोई भी व्यापारी हमारी दुकान पर आवे तो हम ऐसा समझें कि आपने समझो कि मानो भगवान ही आए हैं और उनकी आपने सेवा आदर सत्कार करें कि हमारे यहाँ आकर के बिना सेवा के कोई खाली ले जाने पावे। हम किसी से कोई चीज खरीदें तो यही ध्यान रखें कि हमारे द्वारा उनको कुछ लाभ होना चाहिए। हम किसी को चीज बेचे तो उस बिक्री के में हमारा यही भाव रहना चाहिए कि हमारे द्वारा उनकी सेवा होनी चाहिए क्योंकि भगवान हमारे घर के ऊपर आए हैं। ये भाव और भी उत्तम है। सबको हम नारायण का स्वरूप मान ले वो और भी उत्तम बात है। सब में भगवान व्यापक है, इससे भी ये ऊंचा दर्जा है कि सभी नारायण को ही स्वरूप है, सबने नारायण समझ कर के हम सबकी अपने व्यवहार के द्वारा सेवा करें तो उससे हमारी आत्मा शुद्ध होकर के जल्दी हमारा कल्याण हो सकता है। इसी प्रकार से कोई संस्था का काम करते हैं, जैसे गीता प्रेस का काम है और सब भाई लोग जो है तो गीता प्रेस का काम कर रहे हैं, उसके वहाँ किसी अंश के वहाँ मैं भी शामिल हूँ, तो हम लोग जो गीता प्रेस का काम करने वाले जो भाई लोग हैं, एक प्रकार से थी हमारे यहाँ कोई विशेष फेरबदल की इतनी आवश्यकता नहीं, क्यों आवश्यकता नहीं है कि वास्तव के भीतर के बीच के वहाँ सब जो किसी का रुपयों का स्वार्थ न होने के कारण से झूठ कपट पहला से ही कम है, और फिर और विशेष चेष्टा हम करें तो उसका सुधार होना मामूली बात है। इसी प्रकार से थी ये जो व्यवहार है ये स्वरूप से ही पब्लिक की सेवा के लिए है, इस वास्ते इसका एक परिवर्तन होना बहुत ही सहज है। तीसरी बात जो हमारे समझो कि विषमता का कोई कारण ही नहीं है, किंतु कहीं अपने व्यक्तिगत दोष के कारण से या अपने स्वभाव के दोष के कारण से कहीं विषमता का भाव घटता हो तो उसका सुधार होना कोई कठिन बात नहीं है। इसलिए गीता प्रेस में काम करने वाले जो भाई लोग हैं उनको तो थोड़ा सा ही सुधार करना है, केवल बार बार ये मन के मां समझना चाहिए कि ये सब जो है तो भगवान का ही काम है। ख्याल करना चाहिए कि हम लोग जो है एक प्रकार से थी वाणी से तो कहते हैं कि ये भगवान का काम है, किंतु वास्तव में अभी तक हमारा जो हृदय है उसके बीच के वहां ये बात अच्छी तरह से समझ में नहीं आई। समझ में आती और हम सब भगवान का काम समझते और चेष्टा मात्र को भगवान की लीला समझते और सब यान मात्र प्राणियों को भगवान का स्वरूप समझते और इस भगवान की सामग्रियों के द्वारा भगवान की चीज से हम भगवान की सेवा करें ये हमारा भाव होता तो कार्य करने के वक्त के बीच में क्षण क्षण के बीच के हमारे चित्त में बड़ी प्रसन्नता और बड़ी शांति हमको मिलती। सेवा करने के समय में हमको ये भाव समझना चाहिए कि मानो हम भगवान की सेवा तो कर रहे हैं। ख्याल करना चाहिए सब काम तो जू का त्यू हो ही रहा है, इसमें समझो बाहरी सुधार की तो बहुत ही कम आवश्यकता है, क्योंकि ज्यादा बिगड़ा हुआ हो तो ज्यादा सुधार करना पड़े और थोड़ा बिगड़ा हो तो थोड़ा सुधार करना पड़े, नहीं तो इसके बीच के वहां कोई सेल टिकट की चोरी की जाती है और न इसके वहां कोई इनकम की चोरी की जाती है। इनकम का तो समझो कि कोई अपने गवर्नमेंट का अधिकार ही नहीं है, इस वास्ते गवर्नमेंट देते ही नहीं है और सेल टिकट इनका कोई काम नहीं है, उसके वहां कोई चोरी नहीं की जाती है, इसलिए इसके बीच के वहां कोई विशेष सुधार की आवश्यकता नहीं रहती। फिर भी एक प्रकार से थी यत्किंचित कहीं भी शास्त्र के विरुद्ध क्रिया होती हो तो उसका हम लोगों को सुधार करना चाहिए। इसके बाद के बीच के वहां असली बात वो है कि निष्काम भाव, असली बात यो है कि सब के वास्तव के वहां सब भगवान गीता में कहते हैं कि बहुनाम जन्म नाम के ज्ञानवान मान प्रबद्ध थे वासुदेव सर्वविति स महात्मा सुदुर्लभ, बहुत जन्मों के अंत के जन्म में सब कुछ वासुदेव ही है, इस प्रकार से थी जो मुझको भजता है वह महात्मा अति दुर्लभ महात्मा है। तो इस बात को अपने ध्यान में रख करके और सबको परमात्मा का स्वरूप वासुदेव का स्वरूप समझ करके और हम अपने को सेवक मान करके इनकी सेवा करें तो वो प्रवृत्ति मार्ग के बीच के वहां भक्ति है, और ये भक्ति अनन भक्ति है। वो अनन जा की असी मति न तरे हनुमन, मैं सेवक सचराचर रूप राशि भगवन। तुलसीकृत रामायण के किष्किंधा कांड के मां हनुमान जी के प्रति रामचंद्र जी कह रहे हैं कि हे हनुमान वह मेरा अनन भक्त है, जैकी मति यानी बुद्धि इस सिद्धांत से भी कभी तरती नहीं, यानी इस सिद्धांत से कभी हटती नहीं। क्या सिद्धांत है? जो कुछ चराचर है ये सब भगवान के स्वरूप की राशि है, यानी भगवान के स्वरूप की घनता है, और मैं इन सब का सेवक हूँ और ये सब सेव्य है, यानी सब में स्वामी भाव और अपने में सेवक भाव रख कर के और सबकी सेवा करना, ये एक प्रकार से अनंत भक्ति का स्वरूप भगवान ने बताया है। तो इस बात को अच्छी तरह से समझ कर करके और इस प्रकार हम साधन करें कि यौन मात्र प्राणी मात्र को हम भगवान का स्वरूप समझें, और भगवान का स्वरूप समझ करके और जो कुछ पदार्थ संसार में है ये भी सब भगवान के ही पदार्थ हैं, और सेवा करने वाला जो व्यक्ति है उसको ये समझना चाहिए कि मैं भी भगवान का हूँ। तो भगवान की आज्ञा का पालन करना ही समझो कि आपने सबसे उत्तम साधन है, और भगवान कहते हैं कि इस प्रकार का साधन करने वाला ही मेरा सच्चा भक्त है। स्वयं भगवान ने उत्तरकांड के बीच के माँ अपनी प्रजा के प्रति उपदेश दिया है, उस वक्त में स्वयं भगवान ने ये बात कही है, सोते वक प्रियतम मम सोई मम अनुशासन मानहि जोई। वही तो मेरा सेवक है और वही मेरा प्यारा है जो मेरी आज्ञा का पालन करता है। जैसे गीता के बीच के माँ अर्जुन के लिए यह बात भगवान कही कि भक्तों से मैं सका चेती और है संगे तदुत्तम, अर्जुन तू मेरा भक्त है और मेरा सका है और मैं तेरे को जो उपदेश दिया है ये उत्तम रहस्य की बात है। ये गीता की चौथी अध्याय के तीसरे श्लोक के उत्तरार्ध में भगवान ने अर्जुन के लिए ये कहा है। तो अर्जुन के विषय में ये बात कही कि तू मेरे भक्त भी है और सखा भी है, क्यों कि अर्जुन को शक्य भाव भी थो और दास भाव भी थो। तो भगवान कहते हैं कि वही मेरा सच्चा भक्त है और वही मेरा सच्चा समझो कि प्रेमी या न सखा है जो मेरी आज्ञा का पालन करता है। अर्जुन जो है तो भगवान की आज्ञा के पालन करने वाला था, गीता का उपदेश देकर के, और भगवान ने स्वयं 18वीं अध्याय के वहां अर्जुन को पूछा है कि अर्जुन तेरे मोह का नाश हुआ कि नहीं, मैं जो तने बात कही उसको तुमने ध्यान देकर के सुना कि नहीं सुना। तो अर्जुन उत्तर देता है कि नष्टो मोह है स्मृति लब्धा सत प्रसादात मया च्युता स्थितोस्मि गत संदेह करिष्य वचनं तव। अर्जुन कहता है कि भगवान से हे अच्युत है, मैंने जिसका किसी भी प्रकार से पतन न हो उसको अच्युत कहते हैं, तो भगवान तो नित्य अच्युत है, उसके पतन की कोई संभावना ही नहीं। तो भगवान को कहते हैं कि किसी भी प्रकार से जो माया के द्वारा जिसका च्युत वो च्युत न हो उसको अच्युत कहते हैं। तो हे अच्युत है, मेरा जो मोह है वो नाश हो गया, मेरा जो ज्ञान है वो नहीं रहा, शुरू के वहां तो था किंतु आपके उपदेश से थी आपकी कृपा से थी मेरा ज्ञान सुनाश हो गया, और मैं अब सावधानी के साथ मैं आपकी बात ने सुनी है। इस बात से एक प्रकार से मैं ऐसा नहीं कि जो मैं ठीक अपने प्रकृति में स्थित हूँ, मैं स्मृति मुझको एकदम अच्छी तरह से थी है, जो आप बोल रहे हो वो सब बात मैं ध्यानपूर्वक सुन रहे हूँ, इस वास्ते मेरी स्मरण शक्ति जो है वो भी इस समय के बीच के वहां ठीक है। तो नष्टो मोह है स्मृति लब्धा तो प्रसादात मया च्युत है, आपकी कृपा से हे अच्युत है, ये जो सब बात है इसमें प्रधान आपकी कृपा है, और गत संदेह मेरे जो शंका समाधान थे वो सब समाप्त होगी, अब मैं यही निश्चय कर लिया है कि आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। तो भगवान समझ गए कि बहुत ठीक है। तो फिर अर्जुन ने भगवान की आज्ञा का पालन किया, उससे थी अर्जुन का उद्धार हो गया। इसमें अर्जुन भगवान का भगत था, उसका एक प्रकार से पहला से उद्धार हुआ हुआ ही था। ये गीता तो अर्जुन के बहाने से संसार के कल्याण के लिए भगवान ने कही है, तो थोड़ा ज्ञान हुए बिना वो पात्र कैसे बने सुनने का, जिज्ञासु कैसे बने। इस वास्ते अर्जुन के बीच के वहाँ थोड़ा सा अज्ञान था, वो संसार के कल्याण के लिए भगवान ने खुद रखा था, पहला से उद्धार हुआ हुआ ही था। ये गीता तो अर्जुन के बहाने से संसार के कल्याण के लिए भगवान ने कही है, तो थोड़ा ज्ञान हुए बिना वो पात्र कैसे बने सुनने का, जिज्ञासु कैसे बने। इस वास्ते अर्जुन के बीच के वहाँ थोड़ा सा अज्ञान था, वो संसार के कल्याण के लिए भगवान ने खुद रखा था, वो भी दूर हो गया गीता के सुनने से थी। तो इस बात को ध्यान में रख करके और हम लोगों को भगवान की आज्ञा का पालन करना थी। यदि कहो कि उस समय में तो भगवान मौजूद थे, इस वास्ते वो बात सुगम थी, किंतु इस समय के बीच के मां तो भगवान मौजूद नहीं है, इसलिए हमको भगवान की आज्ञा एक प्रकार से साक्षात कैसे हुए। बोले ये सब बात तो अपने भाव के ऊपर निर्भर करती है। जो आदमी भगवान की आज्ञा का पालन करना चाहता है, भगवान उसके हृदय के मां प्रेरणा करते रहते हैं। हमको हरेक काम के बीच के मां भगवान से पूछना चाहिए कि प्रभु इसमें आपकी क्या सम्मति है, तो हमारे हृदय में स्वयं भगवान प्रेरणा करेंगे कि हमारी ये सम्मति है। तो इस समय के मां तीन प्रकार से थी भगवान अपनी आज्ञा का प्रयोग करते हैं। एक तो महात्मा जो पुरुष होते हैं उसके मुख के द्वारा भगवान आज्ञा का प्रयोग करते हैं। तो महात्मा पुरुष जो संसार में जो हुए हैं, तो उनकी आज्ञा के अनुसार चलना ये भगवान की आज्ञा के अनुसार चलना है, क्योंकि स्वयं भगवान ने यह बात गीता की सातवें अध्याय के 18 के श्लोक में यह बात कही है कि जितनी प्रकार के जो मेरे भक्त हैं, आर्थ जिज्ञासु अर्थार्थ ज्ञानी, वे सभी उदार है। उदारा सर्व एव ते ज्ञानी तो आत्मेव तम एते सर्व एव उदारा। जितने जो भक्त हैं वे सभी उदार है, किंतु ज्ञानी है वो तो मेरा स्वरूप ही है। तो इससे ये बात सिद्ध हो जाती है कि भगवान ज्ञानी महात्मा पुरुषों के मुख के द्वारा, वाणी के द्वारा वे अपना सिद्धांत है सो बतला देते हैं। इसलिए हम लोगों के लिए कोई कठिनाई नहीं। यद्यपि इस संसार के बीच में ऐसे महापुरुषों का हुआ कठिन है, क्योंकि लाखों करोड़ों के बीच के माई कोई एक होता है। मनुष्य नाम सरस्वतु कश्चित यतति सिद्ध है, यततामपि सिद्धानां कश्चित मांग विचित तत्वत है। हजारों आदमियों में से कोई एक आदमी है जो परमात्मा की प्राप्ति रूप सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है। ऐसे प्रयत्नशील महापुरुषों के बीच के मां कोई एक ही भगवान कहते हैं कि मुझ परमात्मा को तत्व से जानने वाला होता है। तो हम लोग को ये विचार करना चाहिए कि एक प्रकार से जिस पुरुष के द्वारा हमारे को अच्छी शिक्षा मिले, जिस पुरुष की बातों को सुन करके और हमारे में देवी संपदा के लक्षण आवे, भगवत प्राप्त पुरुषों के लक्षणों की झलक हमारे में आवे, तो हमारे लिए वही महात्मा है। इस प्रकार से ती समझ करके अपना काम चला लेना चाहिए। यद्यपि एक साधक आदमी है और समझो कि उसके वहाँ उत्तम गुण और उत्तम आचरण करते हैं, देवी संपदा वाला पुरुष है और परमात्मा की प्राप्ति के साधक में लगा हुआ है और समझो कि साधकों में श्रेष्ठ है, तो हमारे लिए हम उसको एक प्रकार से भी महात्मा समझ करके और उनकी आज्ञा का पालन करें, तो हमारे लिए एक ही बात है कि जैसे समझो कि राम सुख जी महाराज आदि जो हैं वे खुद कहते हैं कि मैं तो साधक हूँ और मुझको अभी कोई परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई, किंतु हमारे लिए एक प्रकार से उनका जो वचन है वो भी एक प्रकार से थी समझो कि शास्त्र का वचन है, और शास्त्र का जो वचन है वो भगवान के ये स्वस्थ वचन है। तो इसलिए शास्त्र की जो आज्ञा है वो भगवान की आज्ञा है। तो गीता जो है और समझो कि रामायण महाभारत भागवत उपनिषद श्रुति स्मृति इतिहास पुराण जो हमारे शास्त्र के जितने जो ग्रंथ हैं वे सब समझो कि अपने वास्तव के बीच के माँ भगवान की आज्ञा है। गीता जो है वो तो साक्षात भगवान के वचन है ही, और वेद जो है वे ब्रह्मा जी के द्वारा प्रकट हुए किंतु वास्तव के बीच के माँ समझो कि वो भगवान की ही आज्ञा है। और जितने जो ऋषि मुनियों ने जो कुछ बातें कही है वे वेदों के आधार के ऊपर शास्त्र के आधार के ऊपर ही उन्होंने सब शास्त्रों की रचना की है, इसलिए उनके वचन भी सब भगवान के ही वचन हैं। तो भगवान तीन प्रकार से आज्ञा करते हैं, महात्मा पुरुषों के द्वारा जो कि वर्तमान में हुए, या उस कोटि के जो साधक हैं वे भी एक महात्मा के तुल्य है, जो साधक है उनको भी महात्मा ही बताया है गीता के माँ गीता की 9 अध्याय के 13 के श्लोक में कि महात्मा न तुमांग पार्थ है देवी प्रकृति माँ सीता भजन तनन मनसो ज्ञातवा भूतादि मभ्यम। भगवान कहते